नबी इनसे पूछो, सहरा और समंदर की तारीकियों में तुम्हें कौन खतरात से बचाता है? कभी बहरी सफर किया आपने? रात को जहाज डोलता है, लगता है कि अभी जहाज डूबा के डूबा, फिर किसने हमको जहाज से निकाल कर आफियत से नीचे बचा दिया? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? कौन याद आता है उस वक्त, चाहे गौश कहें या गॉड कहें? बुलाते उस वक्त सब गॉड को ही हैं। कहते हैं कि रशियन बादशाह था, एथियस था, अल्लाह को नहीं मानता था। किसी फ्लाइट में उसकी टीम में जो लोग थे उसमें एक मुसलमान भी था, तो उस बादशाह को मजाक सूझा, कहने लगा इधर आओ, ये तुम मुसलमान कहते हो कि खुदा ऊपर है, तो हम तो इस वक्त काफी ऊपर आए हुए, तो नजर क्यों नहीं आ रहा? अब हम होते तो घबरा जाते, हाय हाय पता नहीं अल्लाह ऊपर है भी कि नहीं। नहीं, उसने बड़े ठंडे सुभाष से कहा, सदर साहब जहाज का दरवाजा खोलें, आपको आगे ही दिखेगा। तो बात यह है कि हम अल्लाह से दूर नहीं हो सकते, अल्लाह हमारे बहुत करीब है। किससे कहते हो, अगर इस बला से इसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्र गुजार होंगे। सोचे, कोई अपनी बीमारी, अपने बच्चे की बीमारी, अपने शौहर की कोई परेशानी, उस वक्त क्या कहा था हमने अल्लाह से कि अल्लाह बस इस मुश्किल से निकाल दे, आज के बाद सीधी हो जाऊंगी। कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है। मुझे तिलावत याद आ रही, इतनी खूबसूरत तिलावत है इनायात की, शायद मेरा ख्याल है कि अबू बकर शात्री की आवाज में या क्या है, यानी आयतें ऐसी हैं कि बस दिल पे फुहार पड़ती है। शर्त है क्या कि आपको समझ आ रही हो? कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है। रात को सर में दर्द था, अब ठीक है, किसने निजात दी? पैरासिटामोल ने, टाइलनॉल ने, अल्लाह ने निजात दी। फिर तुम दूसरों को इसका शरीक ठहराते हो, फिर गुनगाते हो दूसरों के, हाँ फुलां ने किया तो ये हो गया। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नासिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे, यानी या तो तुम्हारे हुक्मरान तुम पे जुल्म करें या तुम्हारी औलादें और तुम्हारे मुलाजिम, तुम्हारे डिपेंडेंट्स ही तुम्हें किसी ना किसी जगह रुसवा कर दें, या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखवा दें। या नोट कीजिए, अजाब की एक किस्म है कि तुम्हें तफरकों में बांट दें, फिरकेबाजी में डाल दें। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने तीन दुआएं की थी उम्मत के लिए, दो कबूल हो गई, एक कबूल नहीं हुई, और वो कौन सी थी? क्या आपने कहा था मेरी उम्मत में तफरकाबाजी ना हो? का ये तो होगा, और आज देखिए ये अजाब हमारे सरों पे मुसल्लत है। इस कुरान से रुके हुए 90% लोग सिर्फ तफरकाबाजी की वजह से रुके हुए, प्यार वो भी करते हैं कुरान से, पर मसला ये कि उनके फिरके का शख्स कुरान नहीं पढ़ाता, और कई तो खौफजदा हैं इस कुरान को उठाने से, कहते हैं चुप, बस पांच सवारे नहीं छह पढ़ना आज, खबरदार इसके मानी पे गौर किया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उम्मत के ऐसे लोग जिनमें खैर है उनको इस कुरान से जोड़ दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां इनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। इन आयतों को पढ़ते हुए तो वाकई ऐसे ही लग रहा है ना, हर मुमकिन गौर व फिक्र करवा रहे हैं अल्लाह ताला हमसे। तुम्हारी कौम इसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो मैं तुम पर हवालेदार नहीं बनाया गया, हर खबर के जहूर में आने का एक वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुमको इंजाम मालूम हो जाएगा। और ए नबी, अब यहां फिर वही हमारा मजमून ज़हन में रखिए, हक और बातिल की कशमकश। और हमारा आज का जो टाइम वेस्टर है ना चेकलिस्ट में, वो क्या है? बेकार मशगलों को छोड़कर ऐसी महफिलें जो वक्त जाया करती हैं, हमने उससे रुकना है। बात समझे? यानी आज का हमारा काबिले गौर टाइम मैनेजमेंट का सिलसिला क्या है? लोगों को खुश करने में वक्त जाया ना करें। हम लोगों को कैसे खुश करते हैं? उनकी दावत पर ऐसी महफिलों में जाकर जहां अल्लाह की आयतों पर तनकीद होती है। जरा सा पढ़िए इस हिस्से को, बात सारी समझ आ जाएगी। हमारा अमल क्या होना चाहिए ऐसे मौके पे? وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ। ए नबी, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयतों पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो इनके पास से हट जाओ, यहां तक कि वो इस गुफ्तगु को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। यानी तुमने उस गलत काम का हिस्सा नहीं बनना। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो जिस वक्त तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए इसके बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास ना बैठो, क्या जुल्म है उनका। अल्लाह की आयतों का मजाक। इनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं, अलबत्त नसीहत करना उनका फर्ज है, शायद कि वो गलत रवि से बच जाए। आप कहते लोग मानते ही नहीं, आज बच्चे नहीं मानते, अल्लाह कहते फिर भी कह दो, तुम कह के बच जाओगे, वो बचे ना बचे। हाँ तुम नहीं कहोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। छोड़ो इन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी फरेब में मुब्तला किए हुए हैं। कैसे खेल तमाशा बनाया? अल्लाह के नाम की रस्में अल्लाह की नाफरमानी के साथ करना शादी सुन्नत है ना, तो करते कैसे हैं? अपनी खुशियां जो नेकी के नाम पे करते हैं किस तरह करते हैं? करो क्या, तनकीद करो? नहीं। ताने दो? नहीं। हाईलाइट कर लीजिए, एक ही तरीका है इसका जो अल्लाह के नबी ने भी इख्तियार किया था, वज़क्किर बिही अंतुफ़सल नफ्सुम बिमा कसबत। हाँ मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तंबीह करते रहो। क्या मतलब, उस महफिल में जाके कुरान की आयतें पढ़ो और उनको मुनाफिक को और उनको शर्मिंदा करो? नहीं, कुरान की ये बेहुर्मती नहीं है। इंतजार ही ना करो कि लोग ऐसे काम करें, इससे पहले ही उनको कुरान से जोड़ दो। जवाब मिल रहा है आपको? हम अपने रिश्तेदारों और अपने प्यारों को जब कोई गलत काम करते देखते हैं कहते हैं अब क्या करें, उस वक्त जाके समझाएं? बेतुकी बात है। उदु इला सबीली रब्बी का बेल हिकमा, अल्लाह ताला तो सूरत नहल में कहते हैं हिकमत से तबलीग करो। इसी पारे कैंड में आप पढ़ेंगे ला तसुब्बुल्ला जीना, तुम दूसरों को गाली ना दो वो तो तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। तरीका क्या के आम हालात में जब वो होश में हो, जब वो जोश और जज्बात और खुशियों के नशे में भी ना मुबतला हो, उस वक्त उनको इस किताब से जोड़ दो। 4 महीने पहले जाकर अपनी बहन को बता दें कि बहन जी अगर आपने अपने बेटे की शादी पे कोई गलत काम किया तो मैं नहीं आऊंगी। आप उस दिन कहेंगे जिस दिन सब कुछ हो चुका है, फिर तो वो और मसला होगा। तो कुरान से जुड़िए। मैं और आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते, ये किताब बड़े प्यारे तरीके से समझाती है। और कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार ना हो जाए, महसूस करें अपनों का दर्द, कितने प्यार से हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन अल्लाह कहते तुम्हें पता है अगर वो अपने उस गुनाह की शामत में आके फंस गए तो क्या होगा, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारशी इसके लिए ना हो, और अगर वो हर मुमकिन चीज फिदिये में देकर छूटना चाहे तो वो भी इससे कबूल ना की जाए, क्या बनेगा? क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे, इनको अपने इनकारे हक के मुआवजे में खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। अल्लाह हमें अपने प्यारों की तकलीफों को देखने से बचाए। आज हम थोड़ी सी तस्खीर और नसीहत नहीं करेंगे ना तो कल हमें उनके बड़े बड़े सदमे सहने पड़ेंगे। अल्लाह ताला बचा के रखे। है नबी इनसे पूछो क्या हम अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें? अब यहां देखिए हिदायत और गुमराही के बीच में परेशान एक शख्स है, और ये स्टेज कब आती है? जब नया नया दीन जिंदगी में आता है। पहले सब एक जैसे थे, अब 7 पारे पढ़ लिए, अब दिल में खलचल है, कश्मकश हक और बातिल की, हिदायत की गुमराही की। अब हर दूसरे दिन ये इशू पेश आ सकता है, कैसे? जरा एंजॉय कीजिएगा। क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दां फिर रहा हो, यहां तक कि इसके साथी इसे पुकार रहे हों, इधर आ ये सीधी राह मौजूद है। ये अच्छे साथी मिल जाते हैं जो इंसान को भटकने से बचा रहे होते हैं, कहते इधर आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ। कहो हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है और उसकी तरफ से हमें ये हुक्म मिला कि मालिके कायनात के आगे सरे इताअत खम कर दो, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो, इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही तो है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए उस दिन वो हो जाएगा। कितनी कुदरत है अल्लाह की, एक कुन कहेगा ये आसमान खत्म, जमीन खत्म, पहाड़ खत्म, इसकर शायद ऐन हक है, और जिस रोज़ सूर फूका जाएगा उस रोज़ बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज़ का आलिम और दाना और बाखबर है। 3 सेकंड तक गौर कीजिए, ये कायनात की बसात जो बिछी हुई है सब उलट जाएगी, अप्स एंड डाउन होगी, आसमान फटेगा, ज़मीन हिलेगी, और अल्लाह को इसके लिए कोई टाइम बॉम्ब या एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंकना पड़ेगा, सिर्फ कुन फयकुन। दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी हिदायत का कुन कह दे, अल्लाह हमारी सेहत का कुन कह दे, अल्लाह हमारे ईमान और तकवा पे कुन कह दे, अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे, अल्लाह हमें हक को कबूल करने वाला बना दे, अल्लाह हिदायत और गुमराही के बीच में लुढ़कते हुए अब हिदायत पे कदम जमाने वाला बना दे। अब आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशाहिदाए हक, ये भी आज के थीम से मैच करता है। निजाशी को हिदायत का दूर से पैगाम मिला, मान गया। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ सब सितारों की पूजा करते थे। आज का कोई बच्चा होता कहता जो माहौल मिले अब उसी में तो पलेंगे, नहीं, कैसे हक को पहचानना, पूरा वाक्या पढ़ते हैं। वही क़ाल इब्राहिम उल अबी ही आज़र, इब्राहिम का वाक़या याद करो जब किसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है, मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इब्राहिम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे, और इसीलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो इसने एक तारा देखा, सितारा, स्टार, कहा ये मेरा रब है, क्योंकि चमकती हुई चीज़ें ट्रैक करती हैं। मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों का तो मैं गर्विता नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता हुआ नजर आया तो कहा ये है मेरा रब, क्योंकि वो चांद सितारे से बड़ा था। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई न की होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठे। पहले तो देखिए इस बारे में भी इब्राहिम है, रशकार क्या पुकारा है, ए बिरादराने कौम में सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो, मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इसकी कौम इससे झगड़ने लगी, इसको हाईलाइट करें, जिसने रब को पहचाना उसकी कौम जरूर झगड़ेगी, उसका खानदान उसको जरूर कहेगा कि तू साबी हो गया और तुझे पता नहीं क्या हो गया, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसकी कौम इससे झगड़ने लगी तो इसने कौम से कहा क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि इसने मुझे राह रास्त दिखा दी। ये जवाब बड़ा खूबसूरत है, वैसे लोगों से ज्यादा वैसे ना किया करें, किसी आपके नेकी के अमल पर कोई बहस करे ये कह दे उसने मुझे राह दिखा दी, और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। तौहीद बंदे को बेबाक बनाती है, डर खत्म हो जाता है। हाँ अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है, मेरे रब का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है, फिर क्या तुम होश में ना होगे, और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए इसने तुम पर कोई सनत नाजिल नहीं की। हम दोनों फरीकों में से कौन बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है, बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तौमन इन्हीं के लिए है, और राह रास्त पर वही हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। सच्ची बात है, डिप्रेशन फ्री जिंदगी ईमान वाली जिंदगी है। आप बहुत कम मुसलमानों को डिप्रेशन में देखेंगे, कह लीजिए कि बामल मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं होगा। खौफ और परेशानी कुफर और फिस्क के तोहफे हैं। यहाँ देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायनात का मुशाहिदा किया, नतीजा क्या निकाला, सबको कंट्रोल करने वालों को मैं मान गया। इससे क्या पता चला कि इब्राहिम की नजरें आसमान पे थी, पहाड़ को क्यों नहीं देखा, नीचे जमीन पे फैले समंदर को क्यों नहीं देखा। इब्राहिम को भी ये पता था कि आसमान पे है रब, खुदाई की तरफ इशारा है। दूसरी बात एक है कि ये चीज हम सबके लिए हुज्जत है। हम कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चों को जो माहौल मिलेगा उन्होंने वैसे ही बनना है। नहीं, इब्राहिम अगर माहौल के रुख पे खुद को छोड़ते तो जोहरा सितारे के आगे बैठकर पूजा कर रहे होते। तो हमेशा अपने बच्चों को कायनात पे गौर व फिक्र और मुशाहदे की आदत डालें। یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. اب تحفے دیکھیے, لکھ لیجئے, اللہ سے جڑنے کے بعد جو تحفے ملتے ہیں وہ دنیا میں نیک اولادوں کی صورت میں ملتے ہیں. اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا, اور ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اور اسی کے خاندان سے اسماعیل, الیسا اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. دعا کرے اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایسے نیک انسان پیدا کرے. نیز ان کے ابا اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا, انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اس کو ہائی لائٹ کریں, وجتبئی نہ ہو. آپ کی نیکیوں کا سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. آپ کی نیکیوں پہ اللہ آپ کی نسلوں کو اپنے کام میں لگا لے گا. کہتے ہیں کہ بیج ڈالے دادا اور پھل کھائے پوتا. نیکی میں بھی ایسا ہوتا ہے. آج جب بھی کوئی نیکی کی نیت کرے نا, کہا کرے اللہ میری اولاد سے بھی کرا. کسی کو دعا دے نا, بہترین دعا آج کے دور میں یہ ہے کہ اللہ آپ کی اولاد کو نیکی میں آپ سے آگے کر دے. اللہ نے ان کے لیے دیکھیے کتنے راستے کھول دیے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. اللہ ہماری نسلوں کو بھی سیدھے راستے پہ لگا دے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا, یہاں نوٹ کریں, 18 نبی, 18 پروفٹس کے نام لیے, ان کی خوبیوں کا ذکر, لیکن شرک کی قباحت دیکھیے کہ اگر یہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اگر شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی. جو نہیں کرتا اس سے اچھا بندہ سامنے ہے جو اس سے منکر نہیں. اے نبی, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہاں بڑا خوبصورت نقطہ دیا اللہ تعالیٰ نے, دین کا کام صرف وہی کرے گا جو اجر اللہ سے مانگے گا, اجرت بھی اور اجر بھی. آپ کسی کو پیسے آفر کرتے ہیں, پیسے لے لو دین کا کام کر دو, کر دے گا. آپ کہتے ہیں ان کی دل جوئی ہو رہی ہے, پر نہیں, شرک ہو رہا ہے. کل پیسے دینا چھوڑیں گے, دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. پیسے دینا نہ دینا ایک الگ بات ہے, پر کسی کو پیسے دکھا کے دین کا کام نہ کروائیں. یاد رکھیے, یہ بھاؤ تاؤ کرنے والا کام نہیں ہے. دینداری اور دکانداری میں بہت فرق ہے. دینداری اندر سے ابھرتی ہے, دکانداری باہر سے آتی ہے. اور کوئی پہلے پیسے پوچھے, نماز پڑھائیں گے تو اتنے پیسے, قرآن پڑھائیں گے تو اتنے پیسے, تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہم سب کو. فرمایا, یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یہاں دعا کریں اللہ ہمیں ساری دنیا تک اس نصیحت کو پہنچانے والا بنا دے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. دیکھیے, مومن کبھی جاب لیس نہیں ہوتا. آج ہم مسلمانوں کے پاس اتنا کام ہے کہ کبھی ہمیں لے آف ہونے کا خطرہ نہیں ہے, کبھی ہماری جاب نہیں جائے گی, کیونکہ کام ہی بڑا ہے, آپشنز ہی اتنی ہے. فرانس میں ہو گیا, چلیے پیرس میں سے نکلیں دوسرے ملک میں, دوسرے میں ہو گیا تیسرے میں جائیے, چوتھے میں جائیے. ابھی تو پوری دنیا میں کام کرنا ہے. وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک پوری دنیا پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نہیں لگتا, مسلمان سو نہیں سکتا. آرام کرتا ہے صرف اس لیے کہ اگلے کام کے لیے تیار ہو جائے. اللہ ہمیں اس درد کی دوا بننے والا بنا دے. اور آگے دیکھیے, کون نہیں کر پاتے جو, وما قدر اللہ حق کا قدری. اصل بات یہ ہے, اب اگلی آیتوں میں بہت پیارے طریقے سے کیا بتایا. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. انہوں نے اللہ کی ویلیو ہی نہیں پہچانی, انہوں نے اللہ کا حق ہی نہیں پہچانا, تبھی تو اتنا اکڑ رہے ہیں. جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا, ان سے پوچھو, پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے وہ تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں نہ حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ. फिर इन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। इसी किताब की तरह ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है। कितने प्यार से अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ी खैर और बरकत वाली किताब है। आप इसकी बरकत फील कर रहे हैं? वक्त में बरकत आई है? एनर्जी मिलती है? यहाँ से थक के तो नहीं जाते? यहाँ से नींद वाले भारे में तो नहीं जाते? अच्छा था घर में 3 घंटे सो जाते, फ्रेश होता है, मजे से इफ्तारी बनती। जितना फ्रेश यहाँ से जाते हुए हम होते हैं, उतना आते हुए नहीं होते। ये इस किताब की बरकत है। इस चीज की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी, और इसीलिए नाजिल की गई कि इसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और इसके अतराफ में रहने वालों को वॉर्न करो, मुतनब्बेह करो। जो लोग आखरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं। इनका हाल ये है कि वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, और इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बुख्तान घड़े या ये कहे कि मुझ पर वही आई, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल न की गई हो। झूठी नबूवत के दावे की सजा है। या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखा दूंगा, काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जबकि वो सकराते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं। ये मौत का वक्त है, और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत रखकर नाहक बोला करते थे और उसकी आयात के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। और अल्लाह ताला फरमाएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है, इस पे एक लेक्चर है और मैं मर गया। मुझे उम्मीद है कि साथी भेजेंगे आपको, छोटा सा लेक्चर है 45 मिनट, उसमें एक बुक का कुछ हिस्सा भी मैंने पढ़ा हुआ है कि जिसमें फर्जी मौत थी किसी की और उस वक्त उसको क्या फील हुआ। वलकद जीतमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा के लिए पैदा किया था। यहाँ लफ्ज तन तनहा पे गौर कीजिए, यह है आज के पारे का थीम। लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करें, क्योंकि जब मैंने अपने अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, जब कब्र में जाना है तो अकेले होंगे, और जो जितना करीबी होगा ना उतनी बड़ी मुट्ठी भर के कब्र की डालेगा, अपनों ने कंधों पे उठाकर कब्रिस्तान छोड़ाना है। तो लोगों को खुश करने से ज्यादा अल्लाह को खुश करें। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो। किधर गया घर, किधर गया कमरा, किधर गई गाड़ी, किधर गया फोन, हाथ नहीं लगाने देते थे अपनी चीजों को, सब किधर गए। अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारी इन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके मुतल्लिक तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में इनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब रबते टूट गए, नो वीफी कनेक्शन इन कबर, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है कबर में, सेल फोन तो यही बंद, नॉट रिस्पॉन्डिंग का नाम चलेगा, हमारा सेल फोन बंद हो जाएगा। कुछ दिन शायद बेलें बजेंगी, लोग कहेंगे उठा नहीं रहे, फिर कुछ दिन के बाद बैटरी डाउन हो चुकी होगी, फिर जब हमारे घर वाले हमें दफना के कपना के 2-3 दिन रो धो के चीज़ें उठाएंगे तो उसमें हमारा डेड हुआ हुआ फ़ोन नज़र आएगा। हम ही नहीं डेड होंगे, हमारा फ़ोन भी डेड होगा। फिर वो उसको बैटरी में लगाएंगे और देखो कोई वसीयत तो नहीं करके, कोई छोड़ तो नहीं गई हमारे लिए पैगाम, और उसके बाद फिर सबको पता चल जाएगा कि अब इस कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दो, शी इज़ नॉट एनी मोर। अपने नाम के साथ लिखिए आई एम नॉट एनी मोर, अपने नाम की मौत की खबर खुद को सुनाए। और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम जोम रखते थे। किनका जोम होता है? शोहर, ये नहीं मेरा साथ छोड़ेंगे, देखिए छोड़ते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं खाते पीते सोते, सब करेंगे। मेरी माँ नहीं जिंदा रहेगी मेरी खबर सुन के, जिंदा रहेगी देखिएगा। और इसी तरह एक एक प्यारा का सब गुम गए, तुम अकेले कब्र में हो गए। तो उस रब को याद करो, उस पे नजरें लगाओ, उसको राजी रखो, उसको खुश करो। कौन है वो? अब आगे पारे के अंत तक अल्लाह की कुदरत की निशानी, इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला, ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है। फिर तुम किधर बह के चले जा रहे हो? परदेशब को चाक करके वही सुबह निकालता है, इसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया, इसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया, ये सब इसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदरों की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। देखो हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह, कौन सी? मेरे आपकी कब्र। ये निशानियां हमने वाजे कर दी इन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से हर किस्म की नबातात उगाई, फिर इससे हरे भरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले और खजूरों के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए। चाट बनाते हुए ये सारी आयतें सोचिएगा, क्या कुछ मालिक आपके मेरे लिए पैदा करता है? कौन से गुच्छे जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं और अंगूर जैतून और अनार के बाग लगाए, जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और फिर हर एक की खसूसियत जुदा जुदा भी हैं। ये दरख्त जब फलते हैं तो इनमें फल आने और इनके पकने की कैफियत जरा गौर से देखो, कैसे फल का पकना और ईमान का पकना दोनों एक तरह चलता है। ईमान का भी पहले दिल में बीज डलता है, फिर हल्की सी कोंपल उभरती है। कांपते हुए हम लोगों से डरते डरते नेकी की नीयत करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि तनावर दरख्त बन के हम ईमान का एक सरसब्जो शादाब दरख्त बनते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे ईमान को पक्का करते हैं। इन चीज़ों में निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो इनका खालिक है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तसनीफ कर दी, हालांकि वो पाक और बालातर हैं इन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला, इसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई इसकी शरीक जिंदगी ही नहीं, यानी बीवी। इसने हर चीज को पैदा किया, वो हर चीज का इल्म रखता है, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ऐसे लगता है पता नहीं किधर ढूंढ रहे थे, यहाँ है वो। कोई खुदा उसके सिवा नहीं, हर चीज का खालिक, लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज का कफील है, निगाहें इसको पा नहीं सकती। कभी दिल करता है अल्लाह को देखने को? इस दुनिया में नहीं देख सकते, हाँ वो निगाहों को पा लेता है, वो नहायत बारीक बीन और बाखबर है। अब मुझे आपको आखिरी नसीहतें की जा रही हैं। देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं, कौन सी? हर आयत एक चमकता हुआ मोती है। अब जो बीनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर पासबान नहीं हूं। कुरान मिल गया, अब इस पे गौर करो और अपने लिए खैर के फैसले करो। इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। ऐ नबी, इस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई, क्योंकि इस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं, और इन मुशरिकों के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिर्क ना करते। तुमको हमने इन पर पासवान मुकर्रर नहीं किया और ना तुम इन पर हवालेदार हो। और ऐ मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते ने गालियां ना दो। देखिए बेहतरीन असूल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया, फिर इन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है, उस वक्त वो इन्हें बता देगा वो क्या कर रहे थे। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं अगर कोई निशानी यानी मौजज़ा हमारे सामने आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। ऐ नबी, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के इख्तियार में है, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। आखिरी आयत, हम इसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मरतबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए थे, हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی. اللہ دل نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے. آپ قرآن سننے آتے ہیں نا تو اگلے دن آنا آسان ہے. آپ ایک دن ذرا انکار کیجئے, آپ دیکھیے دوسرے دن کتنا مشکل ہوگا. تو یہ تھا آج کا خوبصورت پارا, حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ کو تھام لو, اس کی قدر کرو, اس کو دیکھو. ہمارے آج کے پارے کی ٹائم مینجمنٹ ٹپ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. آپ کو ایک شیٹ بھیجی جائے گی, ابھی آپ کو یہاں صرف دکھاتے ہیں, آپ لوگ بے فکر ہو کے دیکھیے, آپ کی ای میل میں آئے گی کہ ہم اس رمضان کے مہینے کا بہترین فائدہ کیسے اٹھائیں. آج آپ کے لیے دے رہے ہیں, کل انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے ایک لسٹ دیں گے. اب دیکھیے یہ رمضان ریمائنڈر ہے آپ کے میرے لیے, نیکیاں کرنے کے بہترین مواقع ہیں ان دنوں میں. پہلی بات ہے غفلت میں نہ گزاریے گا. سب سے پہلے اگر ہم نماز کو دیکھیں, آئیے نیت کرتے ہیں. نمبر ایک, نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے. تیار ہے؟ تحیت الوضو دو رکعت نفل پڑھیں گے, مشکل تو نہیں ہے, دن کے 10 نفل ہوں گے نا. صاف لباس پہنیں, آج کل پتہ ہے گرمی ہے, پسینے والے کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں. باہر سے جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں اس کو فوراً جا کے بدل لیں, اور صاف ستھرے ڈھیلے ڈھالے ہلکے سے کپڑے پہنیے. 12 سنت کے ساتھ ایک دن میں, یعنی جو 12 سنتیں آپ کو پتہ ہے نا, 2 سنت فجر کے, 4 سنت اور 2 سنت ظہر میں, اور اس کے بعد بولیے مغرب کے 2 اور عشاء کے ساتھ 4. ٹوٹل 12 سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی پابندی کی توفیق دے. کوشش کریں گے کہ رمضان میں ان میں سے ایک بھی سنت نہ چھٹے. نماز میں قرآن کی قرأت لمبی کریں, کوشش کرتے ہیں جو صورتیں آتی ہیں لمبی سے لمبی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں گے. کتنے لوگ اس چیک لسٹ پہ متفق ہیں؟ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسری چیز, ہم قرآن کے لیے اپنا ایک ہدف بناتے ہیں. نمبر ایک, روز پڑھیں گے. کتنا پڑھنا ہے؟ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے روز. دوسری بات, پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے. یہاں کچھ موقع مل جاتا ہے نا, اگر اسی پارے کو گھر جا کے آپ صرف اپنی نظروں کے آگے ایسے گزاریں کہ پھر آج کیا کیا پڑھا ہے, تو یہ بھی غور و فکر ہوگا. تیسری چیز, دورہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. چھٹی تو نہیں کرنی اب کوئی, بغیر چھٹی کے پورا دورہ قرآن. کچھ نیا حصہ یاد کرنا ہے, تیسویں پارے کی کوئی ایک صورت رکھ لیں. پھر اس کے بعد زبانی یاد کیا ہوا دہرائیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے تیسواں پارا یاد کیا ہو, بھول چکے ہیں, اب اس کو دہرائیں گے. تیسری چیز ہے دعا, دعا ٹائم. نمبر ایک, عصر کے بعد, سحری میں اور فجر کے بعد. آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان تین وقتوں میں دعائیں مانگیں. جب جس نماز کے ساتھ جس وقت آپ فوکسڈ ہیں, دل کی حضوری کے ساتھ دعا مانگیں. کوئی ضروری نہیں ہاتھ اٹھائیں, کوئی ضروری نہیں آپ قبلہ رو بیٹھے, لیکن کم از کم اس وقت آپ کا دل پورا متوجہ ہونا چاہیے. افطار کا وقت کیسے دیکھیے گا, افطار سے 20 منٹ پہلے نکال لیں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں, امت وسط کے لیے فتنوں سے بچنے کی دعائیں, یعنی افطاری سے پہلے کم از کم 20 منٹ بیٹھیں اور مختلف دعائیں کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تراویح کا ٹائم آ جائے گا, مسجد میں ادا کریں. کتنی سسٹرز ہیں آپ میں سے جو مسجد میں جا کے تراویح پڑھتی ہیں؟ اعوذ باللہ, ان سے بات کریں, ہم ادھر تراویح بھی شروع کر دیں. یقین کریں میں بہت مس کرتی ہوں. کل ایک اور مسجد میں ہم گئے, اتنا انجوائے کیا ہم نے. وہاں زیادہ سسٹر بنگالیز تھیں اور میرا ہلے ڈفرینٹ کلچر کی تھی, لیکن آٹے میں نمک کے برابر پاکستانی سسٹرز تھیں. ہمارے پاکستانی کلچر میں عورتیں نہیں جا رہی, یہ بہت تکلیف کی بات ہے. تو آپ کوشش کیجیے اپنے قریب کوئی اچھی مسجد ڈھونڈیں, آپ کے مرد جاتے ہوں گے وہاں جائیں, نہیں تو کچھ پلان آؤٹ کیجیے. تو ہم کسی ایک جگہ مل کے کسی مرد کو ڈھونڈتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کا ایک اپنا مزہ ہے, اس کے بغیر تو لگتا ہی نہیں کہ رمضان آئے ہیں. دوسری بات, دیکھیے قرآن سنیے غور سے. عشاء کے بعد سورت ملک اور سجدہ ضرور پڑھیں, انشاءاللہ عادت بنے گی. اگر اذکار کو دیکھتے ہیں صبح شام کی دعائیں نہ چھوڑیں. پڑھتے ہیں آپ کے نہیں, جن کے پاس یہ بکس نہیں ہیں یا آپ کے فون میں وہ ایپ نہیں ہے, آپ اپنے نام دیں. یہ بچیوں کو میں سکھا دیتی ہوں, آپ ان کو سارے ایپس دعاؤں کے ڈال دیں. ہمارے پاس جو مختلف قسم کے بہت اچھے ایپس ہیں, تو آپ لوگ اس سے بھی انشاءاللہ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. نماز میں سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو یاد کیجئے. ہم تو صرف ایک دو ہی دعا پڑھتے ہیں نا, لیکن یہاں 8-10 دعائیں ہیں جو صحیح حدیثوں سے ملتی ہیں. اگر حسن المسلم بک ہے اسٹال پہ تو وہ ان کو اویلیبل کر دیں, اس میں تقریباً ساری ہی دعائیں آ جاتی ہیں. پھر اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, تسبیحات ہیں, اور جب انشاءاللہ آخری راتیں آئیں گی تو لیلۃ القدر ہے. फिर इस तरह हमने क्या करना है, कट एंड गार्बेज, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से काटना है और उसको ट्रैश कर देना है। आपने अपनी ट्रैश कैन में झूठ और गीबतों को फेंकना है। कितनी सिस्टर्स हैं यहाँ दिल पे हाथ रख के कहती हैं पूरे रमज़ान में ना झूठ बोलना है, ना गीबत करनी है, ना बदकलामी करनी है, ना इसराफ करना है, ना रियाकारी करनी है, ना बदगुमानी। सबसे मुश्किल है ना, कुछ होने लगे ना दिल को। फिर उसके बाद आप देखिए इधर सहरी का वक्त कैसे गुजारिए, इस्तग़फ़ार का वक्त है। कुरान में आता है वहुम बिल असहारी यस्तग़फिरून। सहरी में जब खाना बना रही होती है ना, तो बच्चों को सलवातें सुनाने की बजाय इस्तग़फ़ार करती रहा करें, तो फिर वो जल्दी उठेंगे इंशाल्लाह। बख्शिश मांगिए दूसरों के लिए भी, तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और तहलील, ये भी तहलील भी ठीक करने वाला है। तहमीद होता है अल्हम्दुलिल्लाह और तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। फिर दुआएं मांगे अपने लिए, उम्मत के लिए, लोगों के लिए, सहरी के वक्त पे भी ये करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगली चीज़ है खैरात और सदका। सबके पास माल होता है, उसमें से कुछ ना कुछ निकालना होता है। किन पे खर्च करें? हमसायों के साथ। इधर और उधर चारों तरफ देखिए कौन मजबूर है। अगर कोई गरीब है तो उसके घर में आटा पानी चावल दे दीजिए, जो भी ज़रूरत है। फिर घर में बच्चों के साथ शेयर करें, गरीबों मिसकीनों को खाना खिलाएं, बॉक्सेस बनाकर इनको दें, दूसरों के फायदे के बने। और ऑफ कोर्स इसके बाद सदका खैरात में हर वो माल जिसमें आपका माल लगता है उसमें इस्तेमाल करें। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं, इधर मेरे तक भी मैसेजेस आते हैं कि क्या हम डोनेशंस दे सकते हैं स्कूल के लिए, वट एवर। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकी का काम है, आपको इससे रोका नहीं जाएगा। हर तरह की चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, तो अगर किसी के भी दिल में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं बाद में, जो भी रेलेवेंट्स आती हैं। अब एक जो बड़ी मुश्किल चीज है आज की स्टेप की, वो देख लीजिए, बी पॉजिटिव। कैसे? मोबाइल फोन उठाने और चेक करने से पहले हर दफा पहले कुरान उठाइए और कुछ पढ़ लीजिए। आप कहते हैं हम फोन ही बंद कर देते हैं महीने के लिए। देखिए ये सब कुछ जो आपसे शेयर किया है, ये आपको कब फायदा देगा? जब आप इसका तावीज बना के गले में डालेंगे? नहीं। आप उसको प्रिंट आउट करके अपनी फ्रिज के ऊपर या जहां आपकी नजर जाती है उस पर लगा लीजिए, और इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। और वक्त जाया करने वाले कामों में से लोगों को खुश करने में वक्त जाया करने की बजाय अल्लाह को खुश करना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इस कुरान को थामें और हमेशा थामे रखें। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।